ग्रामीण विकास में एक पंचायत का सरपंच किस तरह से एक आत्मनिर्भर गांव को बना सकता है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यही कहा था, चलो गांव की ओर।
नामुमकिन से एक सपने को आपने साकार किया।
मेरी माँ 8 दिन निकल गई थी, खुद का अपना करियर देख, एक गांव के भविष्य के बारे में मत सोचना।
बिल्कुल।
तभी माँ जी को मैंने ये बताया कि कुछ दिन रुकूंगा और जैसा ही कोई जॉब हाथ में आता है मैं जॉब के लिए निकल जाऊंगा। इस तरह से माँ को मना लिया और जब गांव में शुरुआत हो गई तो माँ की उम्र की सब महिलाएं माँ जी के पास जाके अपने परिवार की, गांव की कुछ भी समस्या है तो माँ को बोलती थी। और माँ मुझे कहती थी, देख उनके घर में थोड़ी समस्या है, देख कुछ कर सकता है क्या। 20% हमारा ग्राउंड वाटर स्टॉक रहेगा, इसलिए हमने वाटर बजट लाया 95 में। देश का पहला गांव है जो वाटर बजट का, रन ऑफ कितना है, रिचार्ज कितना है, यू ऑपरेट कितना होता है और रेनफॉल कितना है, बस ये कंसेप्ट लोगों को घर घर में दिया वो स्कूल में। क्योंकि हम पंजाब में देख रहे हैं जिस पंजाब की मिट्टी और पानी ने पूरे भारतवर्ष का पेट भर दिया, आज वो खुद का पेट नहीं भर सकेगा, ये हालात। और आध्यात्मिक संस्कार नहीं आ गए क्योंकि आमदनी बढ़ गई तो घर घर में नशे आ गई, देश की नशा की राजधानी आज पंजाब बन गई। तो हमने ये किया कि हमारी विकास की नीति संस्कारों के आधार पर चलने चाहिए, इसलिए हम आध्यात्मिक संस्कार विकास के साथ जोड़ देते। कोई चाय की दुकान नहीं, पान का ठेला नहीं, इसलिए नशा मुक्त गांव है। अब बस एक तो गांव में आपको डेयरी में, एग्रीकल्चर में या पढ़ाई में बच्चे देखने को मिलेगा, इसलिए ये हेल्दी गांव, इको फ्रेंडली गांव इसी कारण बन गया।
नमस्कार, आज हमारे साथ द चेंज मेकर सीरीज में एक बहुत विशेष अतिथि हैं, पद्मश्री श्री पोपट राव पवार जी, जो हिवरे बाजार गांव के सरपंच हैं और जिन्होंने बड़ा अद्भुत कार्य किया अपने गांव में, जिस गांव में तमाम चीज़ों का अत्यंत अभाव था, पानी का अभाव था, जहाँ के लोग 4 महीने के लिए पलायन कर जाते थे अपने गांव से पानी ना होने की वजह से, वहाँ पे इन्होंने इतना उसको समृद्ध बनाया और अपने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल से वहाँ पे पानी उपलब्ध कराया लोगों को कि आज वो एक बहुत ही मॉडल विलेज के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है वो गांव, और इसी मॉडल को लोग पूरे भारत में अलग अलग गांवों में अब रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार पोपट राव जी, आप आए और चेंज मेकर सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है, प्राचीन स्टूडियोज़ में स्वागत है, और आज हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे। तो एक शुरुआत करेंगे, एक संक्षेप में अगर आप अपना परिचय दें पहले तो उससे शुरुआत करते हैं।
मैं 1989 में शिवरे बाजार इस गांव में पंचायत का सरपंच बन गया। 12th साइंस कर रहा था, स्कूल क्रिकेट के लिए सिलेक्शन हुआ, फिर एमकॉम किया पुणे यूनिवर्सिटी, 2 टाइम्स मैं क्रिकेट नेशनल खेल चुका हूँ। गांव में 4th कक्षा के बाद पढ़ाई नहीं थी इसलिए बाहर पढ़ाई हो गई, और जब पढ़ाई के बाद वापस गांव में आ गया तो गांव के हालात इतनी ख़राब हो गई थी, तो एक शराब की बोतल में एक लड़के की शादी बनती थी, पीने को पानी नहीं लेकिन घर घर में नशा थी। बस एक काम करने के लिए गांव की महिलाएं, यूथ आ गया है और शुरुआत हो गई। तो 26 जनवरी 1990 में पहली ग्राम सभा में हिवरे बाजार का एक आगे के 5 साल का प्लान हुआ, बस ये काम शुरुआत हो गई। तो आज हिवरे बाजार एक देश का एक आदर्श ग्रामीण विकास का मॉडल बन चुका हो।
और आपको इस मॉडल के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जिसने एक आर्थिक रूप से कमज़ोर एक गांव को उसने भारत के सर्वाधिक संपन्न गांवों की सूची में ले आए।
सही,
ये आपका बड़ा अद्भुत योगदान है पोपट राव पवार जी, और लोग इसकी वजह से आपको जानते हैं, मानते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन मैं अगर पूछूं कि पोपट राव पवार जी, आप अपने आप को कैसे, किस रूप में पहचानते हैं?
ये तो ग्रामीण विकास में एक पंचायत का सरपंच किस तरह से एक आत्मनिर्भर गांव को बना सकता है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यही कहा था, चलो गांव की ओर। आज जो हमारे देश की एक कृषि प्रधान परंपरा रहे, गांव में बसा हुआ ये देश है। तो आज शिवरे बाजार मॉडल एक देश का पंचायत और आत्मनिर्भर गांव का एक लीडरशिप देने वाला गांव करके अभी पहचाना जाता है।
नामुमकिन से एक सपने को आपने साकार किया, कैसे ये मन में विचार आया, कैसे आपने ये स्वप्न देखा इतना बड़ा काम करने का, और कैसे इसकी शुरुआत हुई?
ये तो गांव ऐसा है कि जो शिरडी वाला डिस्ट्रिक्ट है हमारा, नगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में वैसा ही 81% से ज़्यादा जो DPAP जोन में आता है। तो हमारा गांव भी बस बहुत कम बारिश वाला जो बेल्ट है, 200-300 मिलीमीटर बारिश होती है, और सरफेस रॉक है, ब्लैक सॉइल देखने को नहीं मिलेगी आपको, मुरम हार्ड मुरम। और ऐसे हालात में गांव में जितना भी पानी गिरता है बस उतना ही मिलता था। तो इसी कारण लोग ज़्यादा पलायन करते थे, एक तो खरीफ की फसल और थोड़ी बहुत बारिश हो गई तो कुछ तो भी रब्बी की, वरना 4 महीने के लिए 95% लोग फूड सिक्योरिटी नहीं और रोज़गार नहीं करके गांव छोड़ते थे। बस उसी गांव में चौथी कक्षा तक पढ़ाई हो गई, फिर एक अच्छे रिलेटिव के पास जाने का मौका मिला पढ़ाई के लिए, फिर MCOM तक की पढ़ाई हो गई, और एक क्रिकेट भी अच्छा खेलने को मिला जो मैं नेशनल खेल चुका हूँ। और इसी कारण गांव में एक मेरी इमेज बन गई थी, तो यूथ इसमें, तो लोगों ने जब 89 में इलेक्शन आ गए पंचायत का, तो गांव के बहुत सारे यूथ और ज़्यादातर महिला ने फोर्सफुली ये कहा कि मेरी माँ को कि देखो आपका बेटा लिखा पढ़ा है और वो गांव में कुछ परिवर्तन लाएगा और हालात में सुधार लाएगा। और इसी कारण ग्राम सभा में निर्विरोध मैं पंचायत का सरपंच बन गया। लेकिन उसी वक्त मेरी माँ 8 दिन निकल गई थी, खुद का अपना करियर देख एक गांव के भविष्य के बारे में मत सोचना, क्योंकि इस गांव में हमेशा लड़ाई झगड़े। तो बस ये प्रेरणा मुझे कहीं से मिली पता नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए रुकूंगा क्योंकि स्पोर्ट्समैन के कारण ये अच्छे जॉब भी मेरे हाथ में आए थे। लेकिन जब पंचायत में आ गया और 26 जनवरी 1990 में, तो ग्राम सभा में बहुत सारे लोग आ गए और सभी ने अपने अपने सवाल उठाए, भाई पीने को पानी नहीं, रास्ते नहीं, बिजली नहीं, अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं है, और घर घर में नशा है। तो ये जब सामने आ गया तो मैं तो डर गया था, अरे भाई इतने सारे प्रॉब्लम। उस वक्त तो कोई ऐसी स्कीम नहीं थी, कॉरपोरेट फंडिंग नहीं, बस गिने चुने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट की स्कीम थी। और ज़्यादातर महाराष्ट्र में सूखे के कारण जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम महाराष्ट्र में थी, बस रोज़गार देना है। तो ये देखा मैंने और हमारे पंचायत के सेक्रेटरी को पूछा कि भाई हम क्या कर सकते हैं अभी। तो अकाउंट में हमारे 14,000 रुपये थे। मैंने कहा तो जो परेशानी हमने उठाई है बस ये बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए, तो अच्छा स्कूल हो, अच्छा हनुमान जी का मंदिर है, वो भी बारिश आ गई तो बस बहुत सारे लेके जैसे तो कुछ कर सकते हैं। तो फिर क्या करना? तो उन्होंने कहा भाई रिपेयरिंग के लिए कुछ फंड्स नहीं है, प्रावधान नहीं है। तो मैंने कहा अगर हम लोग 1,000 ट्रेंचेस निकालेंगे और वहाँ पौधारोपण करेंगे तो पेमेंट करने के बाद वो पैसा, तो उन्होंने कहा बस आप 1,000 ट्रेंचेस निकालो, उसका पौधारोपण करो, हम मस्टर भर देंगे और 100 लोगों के नाम पे पेमेंट करेंगे। बस ये कंसेप्ट आ गया और खाली 2-3 घंटे के अंदर सारे गांव के लोग और यूथ महिलाएं आ गए, 1,000 गड्ढे निकाले हमने, और बारिश हो गई तो प्लांटेशन कर दिया उसके बाद। तो फायदा ये हुआ कि वो 14,000 मिल गए, उसमें पहला स्कूल का रिपेयरिंग हुआ, हनुमान जी का टेम्पल, पंचायत भवन, और गांव एक पुराना रेसलर का गांव था, घर घर में पहलवानी थी। बाद में तो सब नशा के कारण लड़ाई झगड़े मर्डर केस भी हुआ था, फिर वो हनुमान जी का टेम्पल और ये 4 मंदिर बन गए, एक हनुमान जी का मंदिर, एक ग्राम विकास मंदिर यानी पंचायत, जो एजुकेशन मंदिर यानी स्कूल और एक पहलवान के करने वाला लाल मिट्टी में कूदने वाले पहलवान, ऐसे चार काम बन गए तो लोग खुश हो गए, सपोर्ट मिल गया। और ये सपोर्ट मिलने के बाद सब लोग कहने लगे कि भाई चलो गांव में परिवर्तन आना शुरू हुआ। फिर मैं गांव में रुका, तो हालात बिगड़ी हुई थी लेकिन एक लीडरशिप मिल गई और लोगों ने भरोसा रखा और 14,000 के एक काम में 1,000 बिजली के पेड़ तो बन गए और वही 14,000 गांव में जमा हो गए, तो चार मंदिरों का निर्माण उसमें हुआ। बस इसी कारण भरोसा और फिर शुरुआत हो गई काम की।
तो पहले आप क्रिकेट खेलते थे?
हाँ,
नेशनल भी खेला आपने?
हाँ, यस।
तो क्रिकेट के मैदान से आप विकास के अखाड़े में उतर गए हैं।
हाँ।
और माता जी नाराज हुई हैं इसको?
सही।
सब जब उन्होंने देखा हाँ। कि वो आप ऐसा करने जा रहे हैं, कैसे आपने मनाया अपनी माता जी को?
नहीं, एक है कि क्योंकि पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, एक मॉडल गांव बन गया, क्योंकि गांव के हालात इतने बिगड़ी हुई, क्योंकि हुरे बाजार एक हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े रेसलर थे वो हमारे गांव में, जो कुश्ती का अखाड़ा चलता था, दंगल चलती थी, उसमें आया करते थे। मेरे पिताजी और चाचा जी भी बहुत बड़े रेसलर हुए थे, जब वो भी उनके फ्रेंड्स गांव में आते थे, तब देखा कि बाद में सूखा आ गया 72, 76, 82, 10 साल में 3 बार ड्राउट और सूखे के कारण रोजगार और उसके कारण पलायन हुआ। और जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बाद पैसा थोड़ा मिलना शुरू हो गया तो दूध की जगह शराब ने ली थी, और इसके कारण 82 में एक मर्डर केस भी हुआ था। तो माँ के दिमाग में ये डर था कि ये भी इसके साथ भी कुछ गलत हो गए तो क्या है, तो इसके कारण माँ यही कहती थी कि तू अपना स्कूल कॉलेज और वो देख। लेकिन जब ध्यान में आए कि बचपन में कितना अच्छा गाँव था, वही प्रेरणा था, झरने का पानी पीना, हर सीजन के फ्रूट चाहे आम हो, जामुन हो, बेर हो, वो जंगल से मिलते थे, और लोग तो लिखे पढ़े नहीं थे लेकिन सुसंस्कारित थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का नेचर था, और नैसर्गिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, उनको साथ लेके ही जीना है, ये मुझे गांव में सीखने को मिला था।
बिल्कुल।
तभी माँ जी को मैंने ये बताया कि कुछ दिन रुकूंगा और जैसा ही कोई जॉब हाथ में आता है मैं जॉब के लिए निकल जाऊंगा। इस तरह से माँ को मना लिया, और जब गांव में शुरुआत हो गई तो माँ की उम्र की सब महिलाएं माँ जी के पास जाके अपने परिवार की, गांव की कुछ भी समस्या है तो माँ को बोलती थी, और माँ मुझे कहती थी देख उनके घर में थोड़ी समस्या है, देख कुछ कर सकता है क्या। फिर बाद में माता जी को भी आनंद लगने लगा, चलो अभी बेटा कुछ अच्छा कर रहा है, किसी घर में परेशानी है तो दुख दूर कर रहा। बस इसी कारण माता जी को मना लिया और शुरुआत हो गई गांव में काम करने की।
वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आपने बड़ा काम किया,
सबसे ज्यादा महिला सक्षमीकरण का काम।
माँ को खुश करने के लिए तो ये भी नहीं किया था?
सही है, क्योंकि माँ जी खुश हो गई क्योंकि कुछ महिलाओं की परेशानी दूर हो गई थी।
Pratyam is about dedicating to Dubai our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past.
We need organizations like Pratyam.
It is old as well as the new rise.
Pratyam Hindu ke gaurav ki gatha gata hai.
60 saal mein humne jo khoya viraasat ke roop mein, sanskruti ke roop mein, usko wapas lane ka kaam kar rahe hain.
Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance.
Pratyam ek uttishchat ka naad hai.
हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राचम द्वारा हो रहा है।
कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राचम पूरा कर रहा है।
प्राचम इज पुटिंग आउट एज एन अर्जेंट सिविलाइजेशन इंपेरेटिव।
गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राचम का कंटेंट करता है।
लॉन्चिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट हिंदू ओटीटी प्लेटफॉर्म इज जस्ट द बिगिनिंग। वी हैव मच मोर टू अचीव।
पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा।
आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है।
काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है।
Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it.
I'm very happy to be a part of the Pracham family.
I extend my best wishes to you and your entire team.
एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राचम का अभिनंदन करता हूँ.
Your support can turn this vision into reality.
Pracham
is doing a very, very good job.
We Sanatanis need Pracham.
People are going back to their roots.
It's important for our country.
Arm yourself with the knowledge.
It's almost like a movement.
This is a visionary endeavor.
Pracham ko saphalta ke liye sadhuvaad.
Amazing job.
Strongly recommend do your contribution.
Support them, subscribe them.
By donating to Pracham, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children.
Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best.
Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.
जो पूरे भारत का सेक्स रेशियो है वो 907 है.
हाँ.
लेकिन आपके गांव का सेक्स रेशियो 1200 से भी अधिक है.
सही है.
तो ये चमत्कार कैसे हुआ?
नहीं, ये तो हमने एक देखा कि हमारे गांव में एकमात्र मुस्लिम परिवार है, तो वो परिवार ने भी परिवार नियोजन किया है. तो साथ ही में वो भी हनुमान जी के टेम्पल में आ जाते हैं, हनुमान चालीसा गाते हैं. तो हमने एक सोशल हारमोनी भी एक बेस अच्छा रखा है. सभी सांप्रदायिक तत्वों को हमने एक आध्यात्मिक मोड ऐसा दिया कि बस हम एक आदर्श गांव, इको फ्रेंडली गांव बनाएंगे. तो इस तरह से जब हमने शुरुआत की गांव में ये काम के लिए, तो सभी लोगों को एक साथ ग्राम सभा में बुलवाया. उसमें सबसे ज़्यादा रोल महिलाओं का था, स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों का था. और हमने ये भी निर्णय किया कि बिफोर मैरिज HIV टेस्ट कंपलसरी कर दिया. शादी के पहले ब्लड ग्रुप, थैलेसीमिया हो, HIV हो, अलग अलग डिसीज होती है. तो हम अभी 15 जुलाई माता जी का स्मृति दिन होता है, उस दिन हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं महिलाओं का. तो वो कैंप में जो भी महिलाओं की परेशानी है घर में, वो किसी को बताती नहीं. तो जब अलग लेडी डॉक्टर आ जाती है तो उनके साथ डायलॉग होता है. और इसी कारण गांव की महिलाएं कनेक्ट हो गई पंचायत के साथ. अरे इन्हें हमारे समस्या का हल तो यही सरपंच बराबर सॉल्व करता है, जो भी समस्या है. और इसी कारण श्रमदान शुरू हुआ, फिर महिलाएं एक साथ आने लगी. फिर वो हमारी जो स्कूल की टीम है, उसमें भी जो बच्चे और महिलाएं एक साथ मिलकर श्रमदान और काम करने लगे. तब महिला जब साथ में आ गई तो घर में जो परेशान करने वाली नशा थी अपने आप दूर हो गई, शराब बंद हो गई. और इसी कारण जब महिला सपोर्ट करती है तो मुझे लगता है बहुत आसानी से काम आगे जाता है.
हमने सुना है कि आपके गांव में जब किसी लड़की की शादी तय होती थी तो वो लड़के वालों से पूछती थी कि उनके घर में टॉयलेट है कि नहीं.
और सही.
अगर नहीं होता तो मना कर देती थी शादी करने से.
पहले तो गांव की हालात ऐसी थी, कोई परिवार वाला अपनी लड़की हमारे गांव में नहीं देता था, क्योंकि पीने की पानी समस्या थी, नशा थी, लड़ाई झगड़े थे. और एक शराब की बोतल में एक लड़की की शादी बनती थी, ये पहले वाली हालत थी. और आज ऐसा है कि आज एंगेजमेंट हो गई, हिवरे बाजार है, तो सब मान लेते अरे एक अच्छा गांव है, हमारी लड़की गांव में जाएगी वो सुरक्षित रहेगी. तब 92 में हमने स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया था और खुद के पैसों से घर घर में शौचालय बनवाया था. और जब वो शौचालय की शुरुआत हो गई तभी महिला खुश हो गई, क्योंकि महिलाओं को अंधेरा है तभी टॉयलेट को बाहर जाना पड़ता था और सूरज ऊपर आने के बाद बाहर जाने में परेशानी होती थी. इसके कारण बहुत सारे पेट के प्रॉब्लम महिलाओं में थी. जब हमने घर घर में शौचालय के लिए हर घर की महिलाएं आगे आई, महिला ग्राम सभा बुलवाई, और शौचालय कितना जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए ये बता दिया, तो महिलाओं ने कहा कि नहीं हम शौचालय यूज कर गए। आज जब बच्चों गांव का लड़का है उसकी शादी तय होती है तो लड़की वाले कहते हैं कि घर में टॉयलेट है क्या, अगर टॉयलेट है तो हम शादी तय करेंगे। तो आज एवरेज हर घर में 2 नहीं 3 टॉयलेट है, गेस्ट के लिए अलग टॉयलेट है, घर में काम करने के लिए बाहर से फार्म मजदूर आ जाते उनके लिए अलग टॉयलेट। तो इस तरह से हिवरे बाजार में घर घर में शौचालय है, ओपन ड्रेनेज नहीं है, शोकपीट से सब, इसी कारण एक मच्छर दिखाओ और 100 रुपए ले लो ये नारा होगा। कभी कभी थोड़ी बहुत कंटिन्यूस बारिश हो गई तो फिर थोड़ा बहुत, नहीं तो 100% वाटर डिसीज गाँव में नहीं है। जो पहले बारिश हो गई तो सबसे ज़्यादा मलेरिया डेंगू ये शुरुआत हो जाती है। अभी मलेरिया और डेंगू गांव में देखने को ही नहीं मिलता, इसका एकमात्र कारण है घर घर में शौचालय और घर का जो वेस्ट वाटर है वो ठीक से कंजर्व किया है हमने।
अच्छा, ये HIV टेस्ट जो कंपलसरी कराया आपने, हाँ, तो इसमें लोगों ने विरोध नहीं किया?
परेशानी हो गई बहुत।
क्या परेशानी हुई?
क्योंकि लड़की वाले वो कहते थे कि हमारे लड़की के ऊपर डाउट लेते हैं क्या आप, तो जब कारण एक हुआ कि हमारे गांव में एक 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की थी, वो जब उसकी मौसेली बहन थी, एक साल पहले उसकी शादी हो गई थी, वो प्रेग्नेंट है लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई एक साल के अंदर शादी के बाद, और उसमें जब उसको पता चला कि वो शादी के पहले HIV पॉजिटिव था, तब वो लड़की ने सोचा मेरे साथ भी फ्यूचर में ऐसा हुआ तो हमारा आदर्श गांव किस काम का। फिर वो लड़के ने एक लेटर पंचायत में मेरे नाम से दिया कि सरपंच जी हमारे गांव में शादी के पहले HIV टेस्ट क्यों नहीं करवाते, क्योंकि कुछ लड़कियों ने स्कूल में उनके साथ डिस्कशन हुआ था। और जब मैंने वो देखा लेटर तो सब जितनी स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ हैं उनको एक साथ बुलाए, मीटिंग करवाई, तो सभी ने कहा हाँ जी हम 100% मान लेंगे। फिर महिलाओं की ग्राम सभा, महिला ने सपोर्ट दिया, और हम शादी तय होती है तभी वो लड़के वाले और लड़की वाले दोनों के साथ हम डायलॉग करते और भरोसा देते कि कोई परेशानी नहीं हुई। इसी कारण शादी के पहले HIV टेस्ट का 2004 में ये कंसेप्ट हमारे गांव में आ गया, और आज जो ब्लड रिलेटेड कोई डिसीज है तो हमारे गाँव में बिल्कुल नहीं है। तो ठीक से काउंसिलिंग हो गया तो अपने आप मान जाते हैं।
तो एक समय जो गांव इतनी आर्थिक विषमताओं से गुजर रहा था और इतनी कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा था, उस गांव में हमने सुना है कि अब 90 करीब करोड़पति परिवार हैं, तो कैसा लगता है इस बात को देख के? हैं ये बहुत बड़ा काम किया आपने।
तो छोटा मोटा काम सरपंच बनने के बाद हम कर रहे थे, श्रमदान हो, स्कूल का रिपेयरिंग हो, ये तो चल रहा था, लेकिन बेसिक जो मूल समस्या गांव में थी वो ग्राम सभा में उभर आ गई। लोगों ने शुरू किया कि भाई ठीक है स्कूल बन गया, रास्ता बन गया, ये सारी सुविधा, लेकिन हम पानी के कारण और भूख के कारण पलायन करना पड़ता है, तो हमारे गाँव में पानी के लिए कुछ करना चाहिए, तो इससे सॉइल और वाटर कंजर्वेशन का कंसेप्ट आ गया है। तो गांव में हमने पहला जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्रपोजल सैंक्शन करके लिया, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 92 में, उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट अच्छी ले ली, साथ ही में गांव में NGO बनवाई, यशवंत एग्री वाटर से डेवलपमेंट ट्रस्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया, और ऑगस्ट क्रांति के अवसर पर 92 में जो आदर्श ग्राम योजना लॉन्च हुई थी भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार की, रालेगांव सिद्धि के आधार पर 100 विलेजेस, तो बस हमारी तो 90 से 95 तक काफ़ी अच्छी मूवमेंट चल रही थी, और यही काम हाथ में आया और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया हमने, वो नीड बेस्ड बनवाया, तो क्या होना चाहिए, फिर टॉप पे एफॉरेस्टेशन, फिर एरिया ट्रीटमेंट में सॉइल कंजर्वेशन, फिर वाटर कंजर्वेशन, एनिमल हस्बेंड्री, जब ये सपोर्ट मिलने लगा, लीडरशिप पंचायत ने दे दी, ग्राम सभा ने समुदाय में सपोर्ट किया, और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जोड़ दिया हमने, बस लोगों के साथ इम्प्लीमेंट किया। अगर 1,00,000 सरकार देती है तो 1,25,000 रुपये का काम हम करते हैं। तो शुरुआत ये हो गई आदर्श ग्राम से, तो तो 5 साल का प्रोजेक्ट 95 to 2000 हमने 2 साल में ख़त्म कर दिया। और पानी की हर एक बूंद जो पहाड़ में गिरती है तो पहाड़ में रिचार्ज हो गई, जो एरिया में गिरती है फार्म में तो एरिया में, फिर ड्रेनेज लाइन, और जलस्तर बढ़ गया, जलस्तर बढ़ गया, बैंक को जोड़ दिया, फिर गवर्नमेंट डिग्री डेवलपमेंट को, आज 5000 लीटर से ज़्यादा दूध कलेक्शन है हमारा पर डे, मिल्क कलेक्शन, जो पहले चाय में डालने के लिए नहीं था। जब जलस्तर बढ़ गया, बैंक ने सपोर्ट किया, कैश क्रॉप आ गया, और उसमें कुछ डिसिप्लिन है हमारा ग्राम सभा में, 7 सूत्र, चराई बंदी, कुल्हाड़ बंदी, नस बंदी, नशा बंदी, श्रमदान, लोटा बंदी, ये 5 बिंदुओं के ऊपर अगर सब काम करेंगे तो अपने आप परिवर्तन आगा। और लोगों को मैंने एक्सपोजर बहुत सारा दिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, NGO, जिन्होंने महाराष्ट्र में अच्छा काम किया था ड्राउट प्रॉब्लम विलेजेस के लिए, बाद में वो पानीदार बन गए और ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण कैश क्रॉप आ गया, शुगर केन, बनाना, वापस ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण जलस्तर नीचे गया, फिर पीने के पानी की समस्या निर्माण। मैंने लोगों को एक्सपोजर दिया, दिखाया, देखो इनका एंड हो गया और हमारा स्टार्ट है, तो एंड का कारण क्या है, तो वाटर मैनेजमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट नहीं हुआ।
प्राचीन is about dedicating to Dubai our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past.
We need organizations like Prachyam.
It is old as well as the new rise.
Prachyam Hindu ke gaurav ki gatha gata hai.
60 saal mein humne jo khoya viraasat ke roop mein, sanskruti ke roop mein, usko wapas lane ka kaam kar rahe hain.
Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance.
Prachyam ek uttishthat ka naad hai.
Hindu samaj ko jodne ke liye aur sachchai dikhane ka kaam Prachyam dwara ho raha hai.
Kai dashakon ki ek avashyakta ko Prachyam pura kar raha hai.
Prachyam is putting out as an urgent civilization imperative.
Gulami ki mansikta agar kahin par bhi andar dhasi hui ho na, usko ukhad fekne ka kaam Prachyam ka content karta hai.
Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve.
Pura janjan satya se tathya se aur yatharth se parichit hoga.
Aapka ye prayatan ishwar ki aradhana hi hai.
Counter narrative ka andolan aarambh ho chuka hai.
Prachyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school.
I absolutely love it.
I'm very happy to be a part of the Prachyam family.
I extend my best wishes to you and your entire team.
Ek bahut badi sanatan ki seva ho rahi hai. Uske liye main hriday se Prachyam ka abhinandan karta hu.
Your support can turn this vision into reality.
Prachyam.
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 Prachyam is doing a very, very good job.
We Sanatanis need Prachyam.
People are going back to their roots.
It's important for our country.
Arm yourself with the knowledge.
It's almost like a movement.
This is a visionary endeavor.
Prachyam ko safalta ke liye sadhuvaad.
Amazing job.
Strongly recommend, do your contribution.
Support them, subscribe them.
By donating to Prachyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children.
Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best.
Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.
तो हमने वाटर बैंक कंसेप्ट जो है वो मनी बैंक कंसेप्ट से किया। अगर 100 लीटर रिचार्ज करते तो 80 लीटर ही हम यूज कर गए, 20% हमारा ग्राउंड वाटर स्टॉक रहेगा। इसलिए हमने वाटर बजट लाया 95 में। देश का पहला गांव है जो वाटर बजट का रन ऑफ कितना है, रिचार्ज कितना है, यूहाफरेट कितना होता है और रेनफॉल कितना है। बस ये कंसेप्ट लोगों को घर घर में दिया, वो स्कूल में 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं 10th तक के स्टूडेंट ये वाटर बजट करवाते, और ज़्यादा पानी वाली फसल को बयान कर दिया, सीजनेबल क्रॉप खरीफ और रबी, और दूसरा ट्यूबवेल को बयान कर दिया, ट्यूबवेल लेना है तो ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी के लिए, और एग्रीकल्चर यूज के लिए डगवेल ले लेंगे। जो 92 में 100 डगवेल थे, कुएं थे, और फरवरी एंड को 100 फीट जमीन के नीचे जाना पड़ता था हैंडपम्प ट्यूबवेल, इतना जल स्तर नीचे था। और आज 415 कुएं गांव में बन गए, और जल स्तर मई में आज 27 में 25 या 40 फीट वाटर टेबल है। अभी हम गांव में एक प्रोग्राम 2 दिन में लेके जा रहे हैं, वो प्रोग्राम है जो जल स्तर के साथ आप पिक्चर ले सकते हैं, सेल्फी विथ वाटर लेवल, हैंडपम्प के पास जाएंगे और सेल्फी का फोटो ले लेंगे। तो ये है कि ग्राउंड वाटर लेवल अच्छी हो गई, और साथ ही में ट्यूबवेल को बैन कर दिया, क्योंकि ट्यूबवेल 200, 400, 500 फीट नीचे जाती है और कुआ 50-60 फीट से ज़्यादा नहीं। इसके कारण आउटसाइड विलेजेस से हमारे गांव में 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि जल स्तर अच्छा है, सॉइल मॉइस्चर है। और ट्री प्लांटेशन जो है, करीब 10 लाख से ज़्यादा हमने पेड़ लगवाए, और चराई बंदी और कुल्हाड़ बंदी इतनी इफेक्टिव है तो पंचायत के परमिशन बिना कोई पेड़ नहीं काटता है। इसके कारण जो पहले ह्यूमन माइग्रेशन था, अभी साउथ अफ्रीकन माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे तालाबों के ऊपर आ जाते हैं। ये चेंज होगा। फूड सिक्योरिटी हमारी नहीं, अभी वाइल्ड लाइफ भी इतना सुरक्षित है, कोई हंटिंग नहीं करता है, और इसी कारण सूखा पीड़ित गांव हरा भरा और पानीदार गांव बन गया। इसका कारण है फॉरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ये एक पार्ट, और आफ्टर कंजर्वेशन दूसरा पार्ट। वो ये है कि वाटर बजट के आधार पर क्रॉपिंग पैटर्न, कम बारिश हो गई तो समर सीजन और रबी के पानी का क्रॉप कम हो जाता है, और बढ़ गई तो समर और आगे करता है। तो आज इतनी सारी समस्या पानी की है महाराष्ट्र में सभी, लेकिन हमारे गांव में कोई पानी की समस्या नहीं, ना जानवरों की चारे की समस्या है, क्योंकि लोग स्टॉक करके रखते हैं। तो खरीफ और रबी में भी फूड सिक्योरिटी आदमी की भी और पालतू जानवरों की भी हो जाती है। अब इसके कारण घर घर में एक देसी गाय भी, हर घर में गिर गाय है। तो आज हम नेचुरल और ऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन किया, क्योंकि हर घर में बायोगैस आ गया, और बायोगैस काउ डंग यूज होने लगा, तो 80% केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कम हो गया गाँव में। तो गाँव अभी हम प्रयास कर रहे किचन फॉर हेल्थ, क्योंकि हम पंजाब में देख रहे हैं, जिस पंजाब के मिट्टी और पानी ने पूरे भारतवर्ष का पेट भर दिया, आज वो खुद का पेट नहीं भर सकेगा, ये हालात है। और आध्यात्मिक संस्कार नहीं आ गए, क्योंकि आमदनी बढ़ गई तो घर घर में नशे आ गई, देश की नशा की राजधानी आज पंजाब बन गई। और दूसरी बात, सॉइल हेल्थ इतनी खराब हो गई तो घर घर में कैंसर आ गया। तो हमने ये किया कि हमारी विकास की नीति संस्कारों के आधार पर चलने चाहिए, इसलिए हम आध्यात्मिक संस्कार विकास के साथ जोड़ देते हैं। और इसके कारण नेचर भी अच्छा हुआ, इको फ्रेंडली विलेज भी बन गया, स्वच्छ और नशा मुक्त गांव बन गया। और आज हम जो कि त्रेता युग में सबसे अच्छा आयुर्मान था, तो प्रभु राम तो अयोध्या में आ गए, तो साथ ही में वो हिवरे बाजार में भी आ गए। जिस शिला से प्रभु राम की मूर्ति बन गई अयोध्या में, वो 1 अंश उसका भेंट करके मुझे आ गया। अब मुझे भी 22 जनवरी अयोध्या जाने का मौका मिल गया था, क्योंकि राम राज्य तो आ गया, लेकिन प्रभु राम तो अयोध्या में आ गए, तो ग्राम राज्य जब तक नहीं आता तब तक राम राज्य हम नहीं मना सकते। तो इसने जितने आदर्श है हमारे देश के, सब अगर आए गए तो हमारे गाँव में आके बैठना रहना पसंद कर देंगे। तो इस तरह से आत्मनिर्भर गांव बन गया, और आमदनी इतनी बढ़ गई, जिस गांव में शुरुआत की तो बस 800 रुपये पर कैपिटा पर ईयर था, फिर 50,000 तक गया, और जो पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट जो इंटरनेशनल नॉमिनेशन उनका, उन्होंने 2 साल गांव का इवैल्यूएशन किया, और जो भी रिपोर्ट आ गया तो उन्होंने कहा 91 मिलेनियर्स का गाँव है आज। और फार्मर इनकम जो है वो अभी डबलिंग नहीं, 5 टाइम बढ़ गया। और क्या है, एग्रीकल्चर, डेयरी, और 79% परिवार में एक तो भी गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि गांव में कोई पुतला स्टैच्यू फ्री विलेज है, कोई चाय की दुकान नहीं, पान का ठेला नहीं, इसलिए नशा मुक्त गांव है। अब बस एक तो गांव में आपको डेयरी में, एग्रीकल्चर में या पढ़ाई में बच्चे देखने को मिलेगा, इसलिए ये हेल्दी गांव, इको फ्रेंडली गांव इसी कारण बन गया।
ये तो बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि अगर इसी मॉडल को पूरे देश में लोग अगर अपने अपने गांव में इसको अगर अनुकरण करने लगे इसी मॉडल का, तो ये पूरा संपूर्ण राष्ट्र कितना स्वस्थ बन जाएगा और कितना समृद्ध बन जाएगा। क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपने जीवन के जितने महत्वपूर्ण पक्ष हैं सभी का ख्याल रखा है, उसको एक तरह तो बहुत ही स्वस्थ बनाया कि लोग बीमार भी ना पड़े, समृद्ध बनाया, और दूसरा जो प्राकृतिक रूप से वहाँ पे पानी का अभाव था वो भी दूर हो गया। एक प्राच्य में एक फिल्म अभी लेके आ रहा है जिसमें जो प्राचीन वाटर मैनेजमेंट होता था, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन कैसे होता था प्राचीन भारत में, उसी पे आधारित ये फिल्म है। उसका नाम है आपो वही अमृतम। तो उसमें हमने यही दिखाया कि कितना आवश्यक है, जल ही जीवन है,
जीवन से।
और जैसा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए ना हो जाए, क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को अगर हम संरक्षित नहीं करेंगे, इनको प्रॉपरली अगर हम मैनेज नहीं करेंगे, इनको प्रॉपर इनका कंजम्पशन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से ये अभाव में हो जाएंगे, और अगर जल का अभाव हुआ तो फिर जीवन का अभाव हो जाएगा। तो ये इस दिशा में बहुत बड़ा काम है आपका।
और ये कि हमारी जो देश की संस्कृति है ये नदियों के साथ जुड़ी है। देखो सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, जैसा कि सूखे के कारण भारतवर्ष में परेशानी आ गई तो भगीरथ ने स्वर की गंगा जी को भूलोक लेके आए, भगवान शिव जी ने जटाओं में लिया तो मुझे भी कैलाश जाने का मौका मिला, मानसरोवर में नहाने का मौका मिला, और एशियन कंट्रीज की जो कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में हुई दो ही टॉक थे, एक ऑस्ट्रेलियन लेडी थी डॉक्टर मारिया करके, अर्बन कम्युनिटी एंड वाटर मैनेजमेंट दिन भर टॉक, और सेकंड डे को रूरल कम्युनिटी एंड वाटर मैनेजमेंट, वो मेरा टॉक था। और लास्ट ईयर एशियन कंट्रीज के मिनिस्टर, उनके सेक्रेटरी, पॉलिसी मेकर मेरे गांव में आ गए थे, तभी मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन इतना ही कहा था कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता दुनिया में महान क्यों है को नेचर के साथ जोड़े, तो एशियन कंट्रीज का फ्यूचर ही पानी का, ये मानस सरोवर है। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, भारतवर्ष, बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत, भूटान, चाइना, सभी का वाटर सोर्स करीबन 33 नदियाँ निकलती है मानस सरोवर से, और आशियाई देशों को समृद्ध करती है। तो देखो कि भगवान शिव जी ने जटाओं में गंगा जी को लिया, भगीरथ तो पहला चीफ इंजीनियर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एशियन कंट्रीज का, जिन्होंने टॉप टू बॉटम कंसेप्ट से वाटर मैनेजमेंट बनवाया था। और कपिल मुनि जी डायरेक्टर जनरल एशियन कंट्रीज के, उनको एक्यूफर नॉलेज था हाइड्रोलॉजी जियोलॉजी का, गंगा जी तो कल्याणकारी। अब भगवान शिव जी कौन थे, वो एशियन कंट्रीज का हेडक्वार्टर था देहरादून में, डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट अकादमी देहरादून, उन्होंने टॉप टू बॉटम जो कंसेप्ट हिवरे बाजार में किया, टॉप पे ट्री प्लांटेशन हिमालयन वैली में, फिर ट्री प्लांटेशन, फिर एरिया ट्रीटमेंट, फिर गली प्लग लूज बोल्डर यानी ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, और पशु संवर्धन, बस गो माता इसे कहते हैं कि इस तरह से जोड़ा था। और सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है तो दुनिया भर के लोग सिंहस्थ में आ जाते, क्योंकि ये जल उत्सव की परंपरा है हमारे देश में, इसलिए ये देश तो दुनिया भर को आकर्षित करता है। क्या हो हमारे देश में, चाहे मुगल आ गए, निजाम आ गए, पुर्तगीज आ गए, डच आ गए, ब्रिटिश आ गए, फिर भी इस देश की महानता कमी नहीं हुई। तो वसुधैव कुटुंबकम यही परंपरा, क्योंकि वो जंगल भगवान का वास पेड़ में होता है, नदी को माता जी कहते हैं, मिट्टी को हमारा भविष्य समझते, इसलिए यह है तो हम सब है। तो आज दुनिया भर के साइंटिस्ट चिंतित है कि आगे के 25 साल में पूरी दुनिया को ठीक से खाना नहीं मिलेगा, क्वालिटी फूड, और क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर। इसलिए आगे के 25 साल दुनिया को एक सही रास्ता दिखाने वाला देश ये हिंदुस्तान होगा, ये भारतवर्ष होगा। इसलिए हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो नेचर के साथ, पानी के साथ जुड़ी हुई, बस इसी को ही आगे हम लेके जाएंगे तो पानी की समस्या खत्म हो सकती
है। मुझे पूरी आशा है कि जो हमारे ऑडियंस और जो ग्रामीण अंचल से आते हैं वो ऑडियंस जब देखेंगे आपके इस टॉक को, चेंज मेकर्स के इस पॉडकास्ट को, तो निश्चित रूप से बहुत प्रेरित होंगे आपकी बातें सुन के, और वो लोग भी अपने गांव में और जो समृद्ध लोग शहर में हैं वो लोग कोई ना कोई कोई गांव को अडॉप्ट करेंगे और इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं एक चीज़ जो आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपकी दृष्टि में किसी भी गांव की आर्थिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है?
ये है कि मैंने 35 साल से जो अनुभव किया, आज देखो लास्ट वीक में भी नेपाल का एक शिष्टमंडल गाँव था, गाँव में करीबन 100 से ज़्यादा कंट्रीज के डेलीगेशन मेरे गांव में आ गए। मैं भारतवर्ष के सारे IIT IIM में जाता हूँ, जो हमारी मसूरी की अकादमी है, लाल बहादुर शास्त्री IAS IPS तैयार होते हैं, 95 से गेस्ट लेक्चर करके जाता हूँ। और एक है, खुद कुछ नहीं करता तो और गांव में रिप्लिकेट होने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये है कि जब वो बाहर से लोग आ जाते तो कई IAS IPS ऑफिसर भी एक एक दो दो दिन हमारे गांव में आके रहते, तो किस तरह से हम ये प्रोग्राम रिप्लिकेट करें। क्योंकि देखो कि अलग अलग सिचुएशन में हमारे देश में तो 90 से ज़्यादा क्लाइमेटिक जोन है, नॉर्थ ईस्ट में अलग समस्या है, साउथ में अलग है, हिमालयन रेंज में अलग है, लेकिन कॉमन फैक्टर एक है कि लोगों की जन भागीदारी, अगर लोगों की भागीदारी बढ़ती है तो समस्या कौन सी भी हो जाए हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इस तरह से जो है कि सब समाज को साथ लेके काम करना, ये हमारी सही डेवलपमेंट की सोच होनी चाहिए। और इसके लिए हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि आज की हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है बस मेरिट पैकेज और फिर पलायन करना है, विदेश जाना है, तो हमारा एजुकेशन ऐसा होना चाहिए तो हमारे भविष्य में पर्यावरण की क्या समस्या है, सॉइल हेल्थ की क्या समस्या है, क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर की क्या समस्या है, ये सिखाना चाहिए। तो हमारे फर्स्ट से लेकर 10th तक स्कूल में आउट ऑफ सिलेबस हम ये लोगों को, बच्चों को पढ़ाते कि गांव क्लीन कैसा रखना है, हमारा गांव जो मैंने बचपन में अनुभव किया था वही आज अनुभव कर रहा। आज सरफेस वाटर झरने का पानी पीते हैं हम लोग, जो एक ज़माने में चला गया था। और जो देसी फ्रूट्स जो है, आम हो, जामुन हो, कोई ये पेड़ भी बेर हो, हमारे क्लाइमेटिक जोन में जो आता है वो उसको भी हम प्लांट करते हैं और बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारी इकोसिस्टम कोलैप्स हो गई क्योंकि हम कहीं विदेश के पौधे लेके आए, गुलमोर नीलमोर, ये हमारे देसी नहीं, इसके कारण इकोसिस्टम कोलैप्स हो गई। तो हमने फ्यूचर में हमारी शिक्षा की नीति यही होना चाहिए कि बस खुशी मिले उतना ही पैसा कमाना चाहिए। क्या है कि फ्यूचर में यही GDP का कंसेप्ट होगा, जिस घर में नशा करने वाला लड़का नहीं है और बीमार लड़का नहीं, वो सबसे ज़्यादा GDP उस परिवार का होगा। पैसा कितना हो अपने घर में इसको कुछ फायदा नहीं, खुशी और हैप्पीनेस का GDP वो होगा नशा मुक्त परिवार और बीमारी मुक्त परिवार। और यह करना है, हमारी शिक्षा की नीति में हमें यही बच्चों को सिखाना है कि भाई फ्यूचर हमारा कहाँ है। तो बस शिवरे बाज़ार में हमने यही किया है, खुशी मिले बस उतना ही पैसा कमाने का है और नेचर के साथ उसको जोड़ना है।
लेकिन जो सरकार की नीतियाँ हैं वो तो इस दिशा में सोचती नहीं है। एक ऐसा देश जहाँ ज़्यादातर प्रदेशों में हर चौराहे पे सरकारी शराब की दुकानें खोली जाती हैं, वहाँ पे ऐसी परिस्थिति में आपको भी तो विरोध का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि सरकार की नीतियाँ तो इन सब चीज़ों को देखती नहीं है। तो क्या, कैसे आपने उन चुनौतियों का सामना किया?
नहीं, एक है कि क्या है कि अभी अमृतकाल चल रहा, 75 साल आज़ादी को हो गए, हर सेक्टर में अभी रिफॉर्म्स की जरूरत है। बदलाव लाने की जरूरत, चेंज करने की जरूरत है। कॉमन एजेंडा बनना चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए, वाटर मैनेजमेंट, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम। नहीं तो क्या है कि एक एजेंडा बदलाव का आ गया तो अपोज में चला जाते हुए गलत कैसा है, और कोई फिर रिफॉर्म्स करने का प्रयास नहीं कर। इसके लिए काफ़ी जन जागृति की जरूरत है, घर घर में, गांव गांव में, शहरों में। और ये जन जागृति आ जाएगी तभी बदलाव संभव है। नहीं तो एक पार्टी ने अच्छा डिसीजन लिया कि बाकी सब अपोज करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे गांव में भी कॉमन एजेंडा बन गया था सब नीति के ऊपर, और ये कॉमन एजेंडे के कारण कोई परेशानी गांव में नहीं है। तो मुझे लगता है राजनीति से हटके हमने हमारे भविष्य के लिए काम करना बहुत जरूरी। अगर ये काम ठीक से होगा तो मुझे लगता है ये देश और समाज का भविष्यकाल काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसलिए हमें हमारी जो नीतियाँ है विकास की, वो विकास की नीति हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट होने की ज़रूरत है।
तो जनता को मिलके जनहित की नीतियाँ सोचनी चाहिए हैं, और सरकारों के ऊपर वो डिपेंडेंट ना हो, सरकारी नीतियों पे। बिल्कुल सही बात है।
Pracham is about dedicating to Dubai our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past.
We need organizations like Pracham.
It is old as well as the new rise.
Pracham Hindu ke gaurav ki gatha gata hai.
60 saal mein humne jo khoya विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं।
Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance.
प्राचम एक उत्तिष्ठत का नाद है।
हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राचम द्वारा हो रहा है।
कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राचम पूरा कर रहा है।
प्राचम इज पुटिंग आउट इज एन अर्जेंट सिविलाइजेशन इम्पेरेटिव।
गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राचम का कंटेंट करता है।
Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve.
पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा।
आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है।
काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है।
Pracham is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school.
I absolutely love it.
I'm very happy to be a part of the Pracham family.
I extend my best wishes to you and your entire team.
एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से Pracham का अभिनंदन करता हूँ।
Your support can turn this vision into reality.
Pracham
is doing a very very good job.
We Sanatanis need Pracham.
People are going back to their roots.
It's important for our country.
Arm yourself with the knowledge.
It's almost like a movement.
This is a visionary endeavor.
Pracham ko safalta ke liye sadhuvaad.
Amazing job.
Strongly recommend do your contribution.
Support them, subscribe them.
By donating to Pracham, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children.
Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best.
Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.